अय्यूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की।
26 सितंबर 1965 को जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली के रामलीला मैदान पर हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वो कुछ ज्यादा ही प्रफुल्ल मूड में थे। ये शास्त्री नहीं बल्कि 1965 के युद्ध के बाद भारतीय नेतृत्व का आत्मविश्वास बोल रहा था। ये वही शास्त्री थे जिनके नाटे कद और आवाज का अय्यूब खां ने मखौल उड़ाया था। अय्यूब अक्सर लोगों का आकलन उनके आचरण के बजाय उनके बाहरी स्वरूप से किया करते थे। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके शंकर वाजपेयी याद करते हैं।
उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हिंदुस्तान तो कमजोर है, एक तो लड़ना नहीं जानते हैं और दूसरा ये पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत वीक है। अय्यूब मान गए थे अब्दुल्ला विजिट के बाद कि वो दिल्ली आके नेहरू से बात करेंगे। फिर नेहरू के देहांत के बाद वो कहते हैं आप किससे बात करें, तो आना मना कर दिया। फिर शास्त्री जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। शास्त्री जी गए हुए थे कायरो, लौटते वक्त वो कराची सारे दिन रुके। मैं विटनेस था जब शास्त्री जी को सी ऑफ करने आए थे प्रेसिडेंट अय्यूब, तो उन्होंने इशारा, मैंने सुना उनको अपने साथियों को इशारा देते कि भाई इसके साथ कोई बात करने की फायदा ही नहीं।
यही नहीं, अय्यूब से सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उनके कश्मीर पर हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं करेगा। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के श्रीनाथ राघवन कहते हैं
वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस की जो माहौल बन गया था वो शायद क्योंकि एक तो आप देख के चलिए कि अय्यूब खान खुद ही पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे, उनको लगा कि नेहरू के गुजर जाने के बाद ये जो नए प्रधानमंत्री शायद आए हैं इनके पास इतनी ताकत नहीं होगी, इतनी क्षमता नहीं होगी कि एक युद्ध झेल सकें, खासकर 1962 के बाद। और उनके जो मेन फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने भी यही इनको चाबी दी कि अगर भारत को हम इस समय पर दबाव पे लाएं तो शायद कश्मीर का जो मसला है वो हमारी तरफ में सुलझ सकता है।
ब्रिगेडियर ए के चौधरी ने अपनी किताब सितंबर 1965 में लिखा है,
लड़ाई के कई साल बाद एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अय्यूब से पूछा था कि आपने इस अभियान से पहले इसके फायदे नुकसान के बारे में अपने लोगों से मशविरा नहीं किया था। कहा जाता है कि अय्यूब ने करीब करीब कराहते हुए कहा कि बार बार मुझे मेरे सबसे कमजोर पक्ष की याद मत दिलाओ।
मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी बीबीसी को बताया कि वो लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान गए थे।
जनरल अय्यूब से पूछा, मैंने कहा ये क्या आपने किया, तुक नहीं था और आप उसमें अच्छे रिश्ते चल रहे थे और ये भी आप जानते हैं कि आखिर में कोई आप जीत तो नहीं सकते थे। कहते हैं मेरी बात मत करो, मैं इसमें मेरा कोई हक नहीं, ये तुम भुट्टो से मिलोगे ना तो उनसे बात करना। मैं जब भुट्टो साहब को मिला तो मैंने कहा कि जी ये आपने क्या किया, सब कोई कह रहे हैं कि ये भुट्टो की लड़ाई है, भुट्टोज वार। कहते हैं हाँ मैं इससे दरीक नहीं करता, सच है। मैं समझता था कि अगर हम हरा सकते हैं आपको हिंदुस्तान को तो अब मौका है, क्योंकि बाद में आपकी इतनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ आ रही हैं और इतने पावरफुल इकोनॉमिकली हो जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई चांस है तो अब है। तो कहता है मैं नाउ हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। उसने कहा कि मेरा ख्याल था कि मैं जब भेजूंगा टेररिस्ट तो वैली वाले सारे उठ जाएंगे, लेकिन वैली वाले तो उसने बड़ी कंटेम्प्ट से कहा, अरे ये तो हाथों हैं, ये तो कोई उठे ही नहीं बिल्कुल।
अय्यूब को इस लड़ाई के लिए मजबूर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध विराम स्वीकार करना भुट्टो के लिए एक बड़ी शर्म का कारण होना चाहिए था, लेकिन इस मौके पर दिए गए उनके भाषण ने तटस्थ देशों को भले ही निराश किया हो लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इसे इसके अक्खड़पन और तिरस्कार के लिए हाथों हाथ लिया।
But that peace and friendship must be a peace of honor. It must be a peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory.
Ayub par kitab likhne wale Altaf Kohar likhte hain.
दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मियां इरशाद हुसैन ने तुर्की के दूतावास के जरिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक कूट संदेश भिजवाया कि भारत पाकिस्तान पर 6 सितंबर को हमला करने वाला है। नियमों के अनुसार विदेश से राजदूतों के पास से आने वाले हर कूट संदेश को राष्ट्रपति को दिखाना जरूरी होता है, लेकिन ये संदेश अयूब तक नहीं पहुंचाया गया, न ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत समझी। बाद में पता चला कि विदेश सचिव अजीज अहमद ने संदेश को इसलिए दबा दिया क्योंकि उनकी नजर में अरशद हुसैन नर्वस हो जाने वाले शख्स थे जो शायद बेवजह डर गए होंगे।
दूसरी तरफ लड़ाई के बाद लाल बहादुर शास्त्री की छवि काफी बेहतर हो गई, खासकर ये देखते हुए कि देश अभी भी नेहरू की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था और उनको भारत और खुद उनकी पार्टी में एक कामचलाऊ व्यवस्था के तौर पर ही देखा जा रहा था। पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह ने एक जगह लिखा कि इस लड़ाई का सबसे बड़ा फैसला सबसे छोटे कद के शख्स ने लिया। इस पूरी लड़ाई में शास्त्री विपक्षी नेताओं सहित भारत के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे। उनके बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं,
लड़ाई के दौरान अमरीका के उस समय के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने साथियों को धमकी दी, बल्कि भारत को धमकी दी कि अगर लड़ाई आपने पाकिस्तान के खिलाफ बंद नहीं करी तो हम आपको PL-480 के अंतर्गत जो यहाँ लाल गेहूं आया करता था वो हम देना बंद कर देंगे। हमारे देश में उस समय इतना गेहूं नहीं पैदा होता था जो हमारे लिए पूरा हो सके। साथियों को बात बड़ी चुभी क्योंकि शास्त्री जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और आज सम्मान के साथ या स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते थे। उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के सामने हम खाने के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, और ये एक हफ्ते का हम अगर भोजन नहीं करेंगे तो जितना गेहूँ अमेरिका से आता है उसकी पूर्ति हो जाएगी इस उपवास से। लेकिन उस अपील से पहले, ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने अपील की, उस अपील से पहले एक दिन पहले उन्होंने मेरी माँ ललिता शास्त्री जी से कहा, आप क्या ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम को खाना ना बने? तो उन्होंने कहा, क्यों, कैसी है, कौन सी ऐसी बात हो गई? उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह देशवासियों से अपील करने जा रहा हूँ कि वो एक समय खाना ना खाएं, और ऐसी सी बात है क्योंकि अमेरिका से गेहूँ आ रहा है, वो आना बंद हो रहा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। उन्होंने खाना उस दिन नहीं बना, हम लोग नहीं खाए, और उन्होंने देखा हम लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तब उनको ये पूरा यकीन हो गया कि अगर मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं तो देश में लोग भी भूखे रह सकते हैं।
फारूक बाजवा अपनी किताब फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद में लिखते हैं कि भारत सरकार के कुछ दूसरे अंगों में कुछ ने बेहतर काम किया तो कुछ ने बहुत मामूली।
रक्षा और विदेश मंत्रालय ढंग से चलाए गए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि दोनों जगह असाधारण काम किया गया तो ये भी गलत बयानी होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की खास तौर पर इसलिए आलोचना हुई कि लड़ाई के दौरान दुनिया के बहुत कम देश खुलेआम भारत के समर्थन में उतरे।
कुछ सैनिक टीकाकारों ने भारत की युद्ध रणनीति को भी आड़े हाथों लिया। उनका तर्क था कि अगर भारत चाहता तो पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान को और अधिक दबाव में डाल सकता था, लेकिन शायद चीन के युद्ध में शामिल होने के डर ने भारत को ऐसा करने से रोक दिया। जब अंतिम समय पर भारत पर युद्ध विराम करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था तो प्रधानमंत्री शास्त्री ने जनरल चौधरी से पूछा था कि क्या भारत को लड़ाई जारी रखने में फायदा है। उन्होंने उन्हें लड़ाई खत्म करने की सलाह दी थी क्योंकि उनकी नजर में भारत का असला खत्म हो चला था, जबकि वास्तविकता ये थी कि भारत के सिर्फ 14% हथियार ही तब तक इस्तेमाल हुए थे।
पहली बात तो यह है कि शास्त्री जी खुद सीज फायर के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मिलिट्री एडवाइस सिर्फ इसलिए मांगा था कि यह जानने के लिए कि अगर मिलिट्री की कोई अलग राय हो तो उसको फिर गौर में लिया जाए। और जनरल चौधरी ने शास्त्री जी को ये एडवाइस दी थी कि हमारे पास जो हमारा एम्यूनिशन है, यानी कि जो लड़ाई करने के लिए जो हमारे पास बॉम्ब्स और बुलेट्स वगैरह चाहिए, वो तकरीबन खर्च हो चुके हैं और इसीलिए कई दिन और युद्ध चलाना हमारे लिए शायद संभव ना हो। बाद में ये पता चला कि एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट था। प्रॉब्लम ये हुई थी हमारे साइड में कि हमारे जो रेलवे प्लान था मोबिलाइजेशन के लिए कि जहाँ से हम एम्यूनिशन को डिपो से लेके फ्रंट तक पहुँचाने हैं, उनमें खामियों और डिलेस की वजह से हमारे जो सेना के पास जो फ्रंट लाइन में एम्यूनिशन था वो थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ओवरऑल पोजिशन बहुत खराब थी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।